यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तवन्ति दिव्येस्तवे वेदैशाङ्गपदक्रमोपनिषदे गायन्ति यमशामगा ध्यानावस्थितद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तन्न विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरे इन्द्रियाणाम् अधिष्ठात्री भूतानां चाखिलेषु या भूतेषु सततं तस्य व्याप्तिदेव्ये नमो नमः व्याप्तिदेव्ये नमो नमः ॐ भद्रं नो अपि वातय मनः ॐ शान्ति 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 ॐ शिवोऽहं शिवोऽहं सच्चिदानन्दोऽहं 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 सत्यं ज्ञान अनन्तं ब्रह्म 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 शिवोऽहं शिवोऽहं सच्चिदानन्दोऽहं 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 बोलिए सच्चिदानन्द भगवान की। सदघन चिदघन आनंद घन कल्याण गुण गण निलय अव्यक्त अविनाशी सर्वेश्वर जगत नियंता जगदाधार करुणा मरुणालय प्रभु की असीम अहेतु की कृपा के साथ कल विचार कर रहे थे। हिरण्येन पात्रेण सत्यश्चापिहितं मुखं तत् पूषानां वा प्रोणु सत्य धर्माय दृष्टये। हम सत्य धर्म सत्य धर्माय आत्मा का धर्म ही सत्य है। सत्य ही आत्म धर्म है, इसलिए इस सत्य धर्म आत्मा का हम दर्शन कर सके और इसके लिए आदित्य मंडल स्थित ब्रह्म जिसकी रश्मियां चारों ओर फैली हुई हैं और जिसके कारण सत्य का दर्शन नहीं हो पा रहा है, और इस ज्योतिर्मय रश्मियों के द्वारा अंतःकरण रूपी पात्र जो जन्म जन्मांतर के संस्कारों के का समूह जिसके अंदर भरा हुआ है, जब तक ये खाली नहीं होगा, इसका ढक्कन हटेगा नहीं, सत्य स्वरूप आत्मा का दर्शन होगा नहीं। इसलिए परमात्मा से प्रार्थना है कि हे भगवान, जो सत्य जो हृदय में चारों तरफ चमक से इतनी बड़ी चमक है कि जिस चमक की चौंध से हमारे नेत्र उस सत्य का दर्शन नहीं कर पा रहे, उसके लिए भगवान से प्रार्थना है कि प्रभु आप हमें इस सत्य का दर्शन करने के लिए वो दृष्टि प्राप्त हो जिससे हम वो सत्य स्वरूप आत्मा को पहचान सके। अगले मंत्र में भी यही प्रार्थना है, पूषा नेव कर्ष यम सूर्य प्रजापत्य व्यहु रश्मि समूह तेजो यत् रूपम कल्याणम तमम यत् पश्यामि सो वाशवो। हे जगतपते सूर्य, हे एकांकी गमन करने वाले यम, हे सूर्य प्राण जो एकांक यम देव को सदैव एकांत में एकांकी गमन करने वाले कहा गया है, हे प्रजापति नंदन, तुम अपनी किरणों को हटा लो और उस तेज को समेट लो, तेरा जो अतिशय कल्याणमय रूप है उसे मैं देख सकूं, और यह जो आदित्य मंडल स्थित पुरुष है वाशो वह मैं ही हूं, क्या देख सकूं कि सोह वह मैं ही हूं। ईश्वर को यहां हिरण गर्भ कहा गया है, हिरण्यमय माने जिसके अंदर सृष्टि का सकल सृष्टि का संस्कार जिसके अंदर विद्यमान हो उसे हिरण्य गर्भ कहते हैं। हिरण्य गर्भ से ही ये सारी सृष्टि उत्पन्न हुई है, वह तो यो ब्रह्मा विवदाति पूर्वम, ब्रह्मा जी की सृष्टि से पहले भी हिरण्य गर्भ सृष्टि से पहले भी था, और हिरण्य गर्भ से ही ईश्वर से ही ये सकल सृष्टि उत्पन्न हुई है। था तो वो पहले और था ही था, जब सृष्टि अर्थात ये प्रपंच कुछ नहीं था, संसार का कुछ नहीं था, तब भी वो था अर्थात हृदय गर्भ, और संसार का जो नियंता है, संसार को जो ईषण करने वाला शासन करने वाला है वह भी ईश्वर है, अर्थात हृदय गर्भ से ही इस सब का शासन हो रहा है। और यम सूर्य प्रजापत्य समूह रश्मि, रश्मि समूह कहा गया है, रश्मि का अर्थ होता है सूर्य की रश्मियां किरणें, और जैसे सूत में से कपास में से तक धागा निकलता है और धागे से धीरे धीरे वस्त्र बनते हैं, उसी तरह से सूत के धागे को रश्मि कहा गया है, अर्थात जो बांधने का काम करती है, जिससे बांधा जाता है। तो संसार से हम बंधते हैं, बोले कैसे बंधते हैं, मेरा अहम वृत्ति, जब अहम की वृत्ति होती है तो तब अहम वृत्ति से मेरा 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 ये होता है, और मेरे मेरे पन के से ही हम संसार के साथ में बंधते हैं। मेरा 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 ऐसा अहम, ये मेरा ये मेरा ये मेरा, ऐसी हम कहकर इतना विशाल संसार अपने साथ खड़ा कर लेते हैं। जिस संसार को, जिस रश्मियों के समूह को हमने अपने अंतःकरण रूपी पात्र में भरा, बोले इसका रूप कैसा है, उसके लिए का हिरण्य माने सोने के समान जिसमें चमक हो, जो आकर्षित करने वाला हो, और जिस चमक से वो सत्य को ढक लिया हो, सत्य दिखाई नहीं पड़ रहा हो, सत्य को जिस जैसे हम लोग कह देते हैं कि देखो आज तो सूरज को बादलों ने ढक लिया, सूरज को बादलों ने ढक लिया, बादल आ जाने पर सूर्य की चमक हमें नहीं दिखाई पड़ती है, सूर्य की चमक कम हो जाती है, उसी तरह से इस हिरणमय संस्कारों के समूह ने वो सत्य का दर्शन, जो सत्य धर्माय है, अपना अहम है, स्वरूप है, मैं है, उसका हम दर्शन नहीं कर पा रहे। बोले क्या कि इस संस्कार जो हमारे हृदय अंतःकरण के अंदर जो संस्कारों की का समूह है, चमक है, जिससे वो दर्शन नहीं हो पा रहा है, हमसे हट नहीं पा रहा है, उसके लिए परमात्मा से प्रार्थना है, ईश्वर से प्रार्थना है कि हे ईश्वर, आप ऐसी कृपा करें कि मैं उस सत्य की उपासना कर सकूं, सत्य धर्म का यथार्थ रूप से सत्य को जान सकूं, सत्य का दर्शन कर सकूं, सत्य को पहचान सकूं, ऐसी मुझे सामर्थ्य प्राप्त हो, ऐसी आप मुझ पर कृपा करें, ऐसा कहकर जिससे संपूर्ण, इसीलिए कहा हिरण्यगर्भ, जिससे संपूर्ण सृष्टि प्राणी मात्र का जो स्वामी है, उसी से प्रार्थना की गई है कि आपसे जो ये सत्य छुपा हुआ है, जिस आपके कारण जब तक ये सृष्टि दिखती रहेगी, जब तक संसार प्रपंच व्याप्त होता रहेगा, तब तक हम सत्य का दर्शन नहीं कर पाएंगे, सत्य को नहीं देख पाएंगे। हमें तो उठते से, आंख खुलने से हमें संसार दिखता है, संसार का प्रपंच दिखता है, संसार में मेरा तेरा दिखता है, और संसार को ही हम मेरा कह करके अपनाते हैं, और दिन रात इसके साथ मैं ये और मेरे को लेकर के, मैं और ये मेरा, मैं हमने किसे समझा, बोले जो हमको हमारे अंदर पूर्व जन्म की बुद्धि के द्वारा, संस्कारों के द्वारा जैसी बुद्धि उपजी, उस बुद्धि के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा जो ज्ञान हमको मिला, उस ज्ञान को ही हमने अपने आप को मैं समझा, और उस परोक्ष ज्ञान के द्वारा मैं समझ करके उस संसार प्रपंच की रश्मियों के साथ, समूह के साथ बध करके हम दिन रात इसी चमक के अंदर रहे, यही सब देखते रहे, परंतु सत्य का दर्शन नहीं कर सके। इसलिए ईशावास्य उपनिषद के 15वें, 16वें और 17वें मंत्र में केवल भगवान से प्रार्थना की गई है कि भगवान से प्रार्थना की गई है कि हे ईश्वर, हे हिरण्यगर्भ, मैं उस सत्य का दर्शन कर सकूं, सत्य धर्माय दृष्टये, लक्ष्य क्या है, बोले सत्य, और सत्य ही धर्म है, सत्य के अतिरिक्त कोई दूसरा धर्म नहीं हो सकता, और उस सत्य को हम सब लोग प्राप्त करना चाहते हैं, सत्यम परम धीमहि, हम सब सत्य को ही प्राप्त करना चाहते हैं। क्यों चाहते हैं, बोले इसलिए चाहते हैं कि हम सब सत्य के अंश हैं, सम सत्य स्वरूप ही है, हम सब सत्य ही स्वरूप है। इसलिए हमारी जो अपनी प्रार्थना है, अपनी चाह है, बोले वो किसके लिए है? सत्य के लिए। सत्य की चाह करना, क्योंकि हम सत्य हैं इसलिए चाह कर रहे हैं, सत्य को देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। परंतु उस सत्य को जानने में, उस सत्य को पहचानने में हमारे लिए बाधा क्या, रुकावट क्या है? बोले रुकावट है ये जो अंतःकरण है, और इस अंतःकरण में एक जन्म के नहीं, अनेका अनेक जन्मों का जो संस्कार समूह इकट्ठा हो रखा है, और इस संस्कार समूह ने ढका हुआ है, ढक दिया है। इसलिए हिरण्येन पात्रेण, इस हिरण्य पात्र से ढक्कन हटे, माने संस्कार समूह हटे, तो हमें सत्य धर्माय दृष्टय, सत्य स्वरूप आत्मा का हमें दर्शन हो सके। और दर्शन क्या हो? सोहस्मि, वह मही हूं, वह मैं ही हूं। बोले ये कब संभव है? जब इसका ढक्कन हटेगा, ये संस्कारों का समूह, एक जन्म का नहीं, कई जन्म जन्म, और इसके अंदर संस्कारों के समूह से, इसके अंदर उपासना से संस्कार इकट्ठा हुआ, और ये जो संस्कारों की चमक है इतनी सुंदर है, इतनी आकर्षक है। बोले क्योंकि इसके अंदर हिरण्य ईश्वर पहले मंत्रों के द्वारा ये बताया गया कि इंद्रियां, ज्ञानेन्द्रियां देवता हैं, और इन ज्ञानेन्द्रियों के द्वारा की जो उपासना की जाती है, देव ईश्वर की उपासना, समष्टि की उपासना, और समष्टि की उपासना से व्यष्टि की पूर्ति होती है, और जो व्यष्टि में है वही समष्टि में है। ये बात पूर्व मंत्रों के द्वारा समझाई गई थी नारायण। इसलिए आइए अब केवल हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि ये जो अंतःकरण का हिरण्यमय पात्र है, आप वेदांत के द्वारा अंतःकरण, जिसको हम अंतःकरण चतुष्टय कहते हैं, मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार, इन चार चीजों को लेकर अंतःकरण चतुष्टय कहा गया है। तो पहली बात मन है, दूसरी बात चित्त है, और तीसरी बात बुद्धि है, चौथी बात अहंकार है। तो क्या ये चारों चीज अलग अलग हैं? मन अलग है, बुद्धि चित्त अलग है, बुद्धि अलग है, और अहंकार अलग है? बोले नहीं। जो वृत्ति, जो चेतन संकल्प और विकल्प करता है, उस संकल्प और विकल्प करने वाले चेतन को मन कह देते हैं, और वही चेतन जब संस्कारों के समूह को इकट्ठा करता है तो उसका नाम चित हो जाता है, और वही चेतन जब निर्णय करने लगता है, निर्णय करता है, तो वही वृत्ति, वही चेतन बुद्धि कहलाता है, और वही चेतन जब वृत्ति के रूप में रहता है, तब वह अहंकार कहलाता है। इस प्रकार यह चेतन तो एक है, और वह अपने पृथक पृथक कार्यों के द्वारा पृथक पृथक नाम से कहा जा रहा है, जिसको अलग अलग नाम से बताया जा रहा है, कहा जा रहा है, वह चेतन तो अलग नहीं है, वो तो एक ही है। और इसी एक चेतन से ये अंतःकरण चतुष्टय माने इसके अंदर मन के द्वारा जो कार्य हुए, चित्त के द्वारा जो कार्य हुए, बुद्धि के द्वारा जो कार्य हुए, अहम करके मैं करके जो कार्य हुए, कर्ता भोक्ता मानकर, वो सब इकट्ठा हुआ है, एक जन्म का नहीं। इसमें बहुत सारे इन समूह की जो चमक है, इस ये संस्कारों के अंतःकरण की वृत्तियों ने जो हमें बांध लिया, जिसकी रश्मियां बहुत लंबी लंबी है, अर्थात सूत का लंबा सा धागा, जितना लंबा धागा होगा उतना ज्यादा लपेटेगा, उसी तरह से हम इसके अंदर में लिपटते चले गए, बदते चले गए, बदते चले गए, और हमसे अब ये बंधन खुल नहीं रहा है। इसे हम इससे मुक्त होना चाहते हैं, छूटना चाहते तो हैं, परंतु छूट नहीं रहा है। उसके लिए जब तक ये छूटेगा नहीं, तब तक हम उसके दर्शन कैसे करेंगे। इसलिए मुमुक्ष परमात्मा से प्रार्थना कर रहा है। क्या प्रार्थना कर रहा है? हे हिरण्यगर्भ, हे संपूर्ण प्रपंच को उत्पन्न करने वाले प्राणी मात्र के स्वामी, और जो आपसे पुरुषानकर्षणेन यमेन सूर्य, हे यम, हे एकांकी विचरण करने वाले, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं। और हे प्रजापति नंदन, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं। हे सृष्टि के पालक, इन सब रश्मियों को, इन सब बंधनों को आप, हे सर्व पालक, हे सबके अंतःकरण में जो अस्तित्व मैं हूं, ऐसी जो अंतःकरण में बुद्धि है, जिस बुद्धि ने हमें बांधा हुआ है, यही रश्मि है। आप इन रश्मियों को, इन किरणों को हटा लीजिए। मैं हूं ऐसी जो रश्मि है, ऐसी जो किरण है, बुद्धि है, उसको आप हटा लीजिए। और ये हटेगी तभी मैं सोहस्मि, वह मैं हूं, उस परम सत्य का मैं दर्शन कर सकूंगा। इसलिए इस मंत्र के द्वारा हमें सर्वत्र परमात्मा, सर्वव्यापी सर्वत्र परमात्मा का हम दर्शन कर सकें, उसके लिए हम भगवान से, परमात्मा से प्रार्थना करते हैं। और अगले मंत्र में यही कहा गया है, वायु निलयामृतम तथेदम भस्मांत शरीरम, ओम क्रतोस्मर 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 क्रतोस्मर। अर्थात मेरा ये जो शरीर जिसमें प्राण वायु सूतात्मा हो, और यह शरीर भस्म हो जाए, भस्मांत शरीरम, ये शरीर भस्म हो जाए। बोले शरीर भस्म हो जाए का अर्थ है, यह जो मेरा स्थूल शरीर है, जिस स्थूल शरीर में वायु वायु के साथ मिल गई, जल जल के साथ मिल गया, पंच तत्वों में विलय कर दिया, यही भस्मांत है। समझ लिया, जो पंच तत्वों के समूह से इकट्ठा होने पर मुझे प्रतीत होने वाला ये सुंदर शरीर, सजीव प्रतीत होने वाला, बड़ा ही आकर्षण प्रतीत होने वाला ये शरीर कुछ नहीं है, ये तो मात्र पंच तत्वों का समूह है, इसकी प्रतीति ऐसे ही है जैसे समुद्र के अंदर वायु के संयोग से एक सुंदर तरंग उठती हुई लहर प्रतीत होती है, दिखती है। वह तरंग को यदि हम पकड़ने जाएं तो जल के अतिरिक्त वो समुद्र के जल के अतिरिक्त और कुछ नहीं होती। उसी तरह से जो ये शरीर जिस पंच तत्वों से प्रतीत हो रहा है, इस पंच तत्वों के प्रतीत होने वाले शरीर को पंच तत्व में विलय कर दिया तो उसको कहा इस प्रकार इसको विलय कर देना, यही शरीर का भस्म हो जाना है। मेरे मन ऐसा संकल्प कर, क्या संकल्प कर? बोले बैठ करके संकल्प करो। आनंद के साथ जब आप बैठते हैं तो संकल्प करें कि पृथ्वी पृथ्वी में लीन हो गई, जल जल में मिल गया, वायु वायु में मिल गई, आकाश अग्नि अग्नि में मिल गई, आकाश आकाश में मिल गया। शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये पंच तन्मात्राएं हैं और शब्द ये पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश ये पंच तत्व हैं और पंच तत्वों से पंच तन्मात्राएं हैं। ये तन्मात्राओं के साथ ज्ञानेन्द्रियां और पंच तत्वों के साथ स्थूल शरीर ये व्यष्टि में प्रतीत होने वाला मिल गया, समष्टि के साथ एक हो गया। जब इस प्रकार हम इसको सबके साथ मिला देते हैं, मिलाते कैसे हैं? ओम क्रतोस्मरण, यही केवल बाकी क्या रहा? बोले केवल ए ओम परमात्मा ब्रह्म। ब्रह्म क्या है? बोले ओम ही तो ब्रह्म है, ओम के अतिरिक्त कोई ब्रह्म थोड़ी है। परमात्मा का स्मरण किया, भगवान परमात्मा को याद कैसे करोगे? बोले ओम 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 ओम, केवल ओम अक्षर, ये ओम ही नित्य ब्रह्म है। इसीलिए कहा ओमकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव ओमकाराय नमो नमः। यह केवल ओम शब्द है। ओम कतोष्मण, इस प्रकार आप ओम का स्मरण करें, स्मरण करें, स्मरण करें। तीन बार कहा गया ओम कतोष्मण कृतस्मरण कृतोस्मरण कृतोस्मरण। आप केवल स्मरण करें, केवल स्मरण करें, केवल स्मरण करें, ओम 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 कहकर इस शरीर को पंचभूतों में भस्म करते हुए, भस्म से अभिप्राय विलीन करते हुए, जब पंच तत्वों में इस पंचभूतों में इस शरीर को विलीन कर देंगे तो केवल केवल केवला केवल एक स्मरण किसका रह जाएगा? बोले ब्रह्म का। ब्रह्म ही ओम है और ओम ही ब्रह्म है। ओम ब्रह्म कहो ओम कहो, बात एक ही है नारायण। तो ये ब्रह्म वो है जो निष्प्रपंच है, जिसमें कोई प्रपंच नहीं, और हिरण्यगर्भ है जिसके अंदर प्रपंच है, अर्थात सकल जगत जो जिसके अंदर सत्ता विद्यमान है, जो सत्ता से युक्त है उसे ईश्वर कहते हैं, हिरण्यगर्भ कहते हैं। और जिसने अपनी सत्ता को अपनी जो सत्ता से अलग होकर के जिसके अंतर कोई प्रपंच नहीं, सत्ता नहीं, जिसने सत्ता से अपने को रहित कर लिया, ऐसा निष्कल जिसको ब्रह्म कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, निर्विकार कहते हैं, निर्दोष कहते हैं, निरंजन कहते हैं, एक नित्य कहते हैं, ऐसा जो स्मरण है ओम है, वह तो केवल ब्रह्म है, केवल ब्रह्म है। और वह केवल निष्प्रपंच वह ओम ही सत्य स्वरूप है और सोहस्मि वही मैं। ओम का जो स्वरूप है वह ओम स्वरूप कोई और नहीं है, वह ब्रह्म वह ओम मैं ही हूँ, आत्मा है। इस प्रकार इस सत्य का हम दर्शन कर सकें इसके लिए साधन क्या है? बोले साधन केवल भगवान का परमात्मा का ओम का स्मरण है। बैठ करके साधक को चाहिए कि वो नित्य निरंतर निष्प्रपंच होना चाहता है, जगत के इस प्रपंच से अपने आप को मुक्त करना चाहता है, तो केवल वो स्मरण करे, याद करे, किसका भगवान से प्रार्थना करे और भगवान को याद करे। ये बात याद है कि भगवान से प्रार्थना करे और भगवान से को याद करे। भगवान से प्रार्थना करते हुए भगवान को याद कैसे करोगे? बोले ब्रह्म को प्रभु को याद करने के लिए केवल ओम उसका एक प्रतीक है। केवल ओम के प्रतीक करते हुए उसको याद करने के लिए ओम ही ओम ऐसा कह करके ही उसे याद रखा जा सकता है, याद किया जा सकता है, इसलिए ओम को प्रतीक माना गया है। उपासना के लिए आपके पास, क्योंकि बिना किसी प्रतीक के इस मन को उस सत्य के साथ एकाग्र करने के लिए, मन में सत्य का संकल्प करके, सत्य का संकल्प कैसे हो? बोले बिना किसी प्रतीक के ये मन किसी संकल्प को करने के लिए, कोई न कोई साकार रूप इसके साथ सामने होता है तो मन उसी का संकल्प करता है। यदि कोई रूप ही न हो और मन से कहा जाए कि तुम संकल्प करो तो वो क्या संकल्प करेगा? कोई संकल्प करने के लिए उसके पास कोई प्रतीक ही नहीं है। इसलिए ओम को प्रतीक बना करके जो संत है, ज्ञानी है, विद्वान है, अर्थात उस निर्गुण ब्रह्म के स्वरूप का, अध्यात्म का, आत्मा का चिंतन करने वाले मनीषी लोग हैं, वो केवल ओम को ही प्रतीक रखते हैं। और हम सबों का अध्यात्म स्वरूप का चिंतन करने वाले केवल एक प्रतीक रखते हैं, केवल एक प्रतीक, क्योंकि एक ही अनेक में व्याप्त है और अनेक को वो एक में देखते, वो एक केवल ओम प्रतीक है और उस ओम का ही वो निरंतर ध्यान करते हैं, ओम का ही स्मरण करते हैं। इसलिए कहा क्रतो स्मरण ओम, ओम को अ म, इन तीनों अक्षरों को ऐसे अलग कर दो ना, अकार मकार और उकार, तीनों को अलग करें तो उसके लिए इसके सगुण स्वरूप की ओम के ऊपर तो एक उपनिषद ही है, अ उ म तीन अक्षर हैं अलग अलग, अ से अकार, म से मकार, उ से उकार, अर्थात जो सकल सृष्टि को उत्पन्न करने की, जिसमें जिससे सकल सृष्टि उत्पन्न है, जिसमें सकल सृष्टि स्थित है और जिसमें सकल सृष्टि लीन हो जाती है, ऐसा जो सत चित और आनंद है, ज्ञाता ज्ञेय ज्ञान है, दृष्टा दृष्टि दृष्टि है, अर्थात ध्याता ध्येय ध्यान है, अस्ति भांति प्रिय है, ये जो त्रिपुटी है ना, त्रिपुटी कहते हैं ये तीन चीजें, इन त्रिपुटी का एक रूप यदि है तो केवल ओम है। ओम के अंदर त्रिपुट विद्यमान है, और इस ओम के जो उपासक होते हैं ना, आपने कभी कभी संतों को देखा होगा कि जो सन्यासी लोग होते हैं ना, वो माथे में त्रिपुंड धारण करते हैं, है ना। जो एक तिलक होता है जो ऐसा लंबा होता है, ऐसा लंबा जो तिलक लगाते हैं वो वैष्णवों का होता है, और जो ऐसे लंबा ऐसी तिरछा तिलक लगाते हैं वो सन्यासियों को प्राय आपने देखा होगा भस्म की, वो भस्म का तिलक धारण करते हैं मस्तक पर, इसको कहते हैं त्रिपुंड। त्रिपुंड धारण करने वाले माने त्रिपुटी, और त्रिपुटी क्या है, ज्ञाता ज्ञे ज्ञान, ध्याता ध्येय ध्यान, अस्ति भांति प्रिय, सत चित आनंद, दृश्य दृष्टा दृष्टि। ये जो त्रिपुटी है माने ये तीन है, और ओम में भी तीन ही अक्षर हैं, अकार उकार और मकार, ये जो तीन अक्षर हैं यही त्रिपुंड है। और ये सकल सृष्टि किसमें है, त्रिगुणात्म है, तीन रूप में त्रिगुणी सृष्टि, सत रज तम, इस प्रकार तीन को लेकर के विचार किया गया। और वेद क्या है, बोले वेद भी त्रय है, तीन वेद हैं, ऋग यजु साम। इस प्रकार ये सारे का सारा जो ज्ञान है, विद्या है, जिसे अध्यात्म विद्या कहते हैं, ब्रह्म विद्या कहते हैं, ये सारी विद्या सारा ज्ञान किसके अंदर विद्यमान है, बोले एक छोटा सा अक्षर है ओम। और ये ओम जो अक्षर है ब्रह्म के, ब्रह्म का प्रतीक है, और इसी से सारे ज्ञान की, सारे विज्ञान की, सकल सृष्टि की प्रतीति किससे हो रही है, बोले केवल इस ओम से। इसलिए ओम को याद रखना, केवल इतना छोटा अक्षर है। बहुत लोगों को ये भ्रांति होती है, यदि ओम 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 करते रहेंगे तो भैया ओम कहने से तो संसार छूट जाएगा। बहुत से लोग कहते हैं ये जो ओम अक्षर है प्रपंच रहित है, निष्प्रपंच है। इसलिए जो लोग संपूर्ण प्रपंच से अपने आप को छुड़ाना चाहते हैं, निष्प्रपंच होना चाहते हैं, वो किसका ध्यान करें, अर्थात जो केवल ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें क्या करना चाहिए, बोले केवल ओम ओम का ध्यान करना चाहिए। कुछ संप्रदाय आग्रही लोग कहते हैं देखो राम राम करोगे, कृष्ण कृष्ण करोगे, शिव शिव ये करोगे तो तुम्हें राम जी की कृपा से सारे गुण मिलेंगे, सारा सौख्य मिलेगा, सारा सुख मिलेगा, और कृष्ण कृष्ण करोगे तो भगवान श्री कृष्ण तो रसिक हैं, सगुण हैं, साकार हैं, इससे आपको सब सुख प्राप्त होगा, परंतु ओम ओम करोगे तो सब से छूट जाओगे। कुछ लोग ऐसी भ्रांति, परंतु वास्तविकता ये है कि ये ओम परम पावन है, परम पवित्र है, परम निर्मल है, किस निर्विकार है, जिसमें कोई विकार नहीं, कोई दोष नहीं, जिसको ये कहते हैं ना सोना एक ऐसा धातु है जो कभी आग में डालो तो भी नहीं जलता। सोना एक ऐसा धातु है कि जो अपने आप में 100 में 100% शुद्ध है, जिसमें कोई सोने के अंदर दूसरा विकार आ ही नहीं सकता, 100% जिसे शुद्ध आप कहते हैं, तो ये 100% शुद्ध जो स्वरूप है वो किसका है, बोले ओम का है। और यही जो शुद्ध स्वरूप है वो किसी और का नहीं है, सोहस्मी, वो मेरा है, वो मैं हूं। जैसे आप सोने की पवित्रता को आप 100% स्वीकार करते हैं उसमें कहीं से कोई अपवित्रता दोष नहीं है कहते हैं, उसी प्रकार 100% जो शुद्ध स्वरूप है वो ओम है। और जैसे सोना शुद्धता का एक प्रतीक माना लिया गया, सोने को शुद्धता के एक प्रतीक के रूप में स्वीकार किया धातुओं में, उसी तरह से अत्यंत परम शुद्ध स्वरूप में जो प्रतीक के रूप में स्वीकार किया गया वह ओम है और ओम ही मैं हूं। इसलिए हमेशा स्मरण करो, हमेशा याद रखो अपनी पावनता को, अपनी पवित्रता को। जो वो पावन और पवित्रता किसकी? ओम की पवित्रता की। ओम के जैसे आप पवित्र हैं, निर्मल हैं, पावन हैं, निष्प्रपंच हैं, कोई आप में प्रपंच नहीं, कोई गुणादि दोष नहीं आपके अंदर, ये गुणों का दोष भी नहीं है। इस प्रकार इस ओम का स्मरण करो। वायु निलयमामृतम तथेदम भस्मांत शरीरम, ये शरीर को छोड़ करके अर्थात यह मेरा प्राण सर्वात्म वायु सूतात्मक हो, यह शरीर भस्म शेष हो जाए अर्थात स्थूल शरीर समाप्त हो जाए, मेरा संकल्प हे मेरे संकलात्मक संकल्प आत्मक मन अब तू केवल स्मरण कर, अब तू केवल स्मरण कर, ओम का ही स्मरण कर। ऐसा अपने मन से मैं हमेशा ये बात पूर्व भी आपको कहती आई हूं नारायण, उपदेश किसको करना है? उपदेश करने के लिए हमें कोई चाहिए क्या जिसको हम बिठा करके अपने पास उपदेश दें, सिखाएं, समझाएं, पढ़ाएं, बताएं? संतों ने सबसे बढ़िया शिष्य समझा, जिसे पढ़ाया, जिसे समझाया, जिसे सिखाया, जिसे रटाया, जिसको मां दिशा दी, तो वो किसको दी? बोले केवल केवलो केवल अपने मन को। इसलिए उपदेश किसी दूसरे को नहीं करना है, उपदेश दूसरे को देने का हमें अधिकार ही क्या है? उपदेश तो देने का अधिकार तो उसी को है जो सामने यदि उपदेश ग्रहण करने के लिए शिष्य हो। शिष्य को उपदेश दिया जाता है, पुत्र को उपदेश दिया जाता है, तो पुत्र प्रिय आज्ञाकारी शिष्य हो, बोले प्रिय आज्ञाकारी शिष्य पुत्र जिसको भी बनाना है तुम अपने मन को ही बनाओ और इसी मन को उपदेश करो। इसलिए श्रुति माता भगवती कहती है हे मेरे मन, हे मेरे संकल्पात्मक मन, संकल्प करना है तो किसका संकल्प कर? ओम का संकल्प कर। और इसी संकल्प के साथ तू निरंतर स्मरण कर, याद रख, याद कर, याद कर, याद कर। बोले किसको याद कर? केवल ओम को याद कर। इसे याद रखोगे माने ओम याद रहेगा तो हर समय फिर ये मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं, ये याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। ओम यदि स्मरण रहेगा तो आपको निश्चित रूप से अपने स्वरूप का, मैं क्या हूं, ये स्वरूप का ज्ञान रहेगा। इसलिए भगवान को केवल साधन बताया गया है नारायण। बात तो केवल यही है गोस्वामी तुलसीदास जी की, ये बात याद कर लो कि कलयुग केवल नाम धारा। और यह ईशावास्य उपनिषद की ये बात याद करो, ओम क्रतो स्मरण, केवल स्मरण करो, केवल स्मरण करो, ओम का स्मरण करो, ओम का स्मरण करो, ओम का स्मरण करो। करने के लिए केवल हमारे पास है, हे मन तुझे कुछ करने के लिए तेरे पास है तो सिर्फ केवल एक स्मरण है। मैं तो हमेशा कहती हूं कि हम स्मरण के अतिरिक्त कर भी क्या सकते हैं। जो कुछ हो रहा है ये सब ईश्वरी सत्ता से, ईश्वर से हो रहा है, वो कर रहा है, उसका प्रपंच है और वह स्व अपनी इच्छा के अनुसार जैसा जैसा जो कुछ होता है, बोले क्या होता है, जो ईश्वर के संकल्प में, जो उनकी सत्ता में वही होता है, जो उनके संकल्प में वही उनकी सत्ता में, और उसी से ये सब हो रहा है। तब हम क्या कर रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए, जो हो रहा है ये बात बड़ी सरलता के साथ पूज्य ब्रह्मलीन परम श्रद्धे संत थे श्री रामसुख दास जी महाराज कहा करते थे, भैया तुम्हें क्या करना है, बोले तुम्हें तो केवल एक विश्वास अपने अंदर पैदा करना है। ये विश्वास तुम्हें हो जाना चाहिए। क्या विश्वास होना चाहिए, वो हमेशा कहा करते थे केवल है इतना विश्वास कर लो, एक अक्षर पर है बस ये मान लो, एक कुछ तो तुम्हें मानना पड़ेगा ना। बोले मानना है तो एक बात मान लो, बोले है बस इतना मान लो, एक बात मान लोगे है, इस बात को मान लोगे तो बस, ये कहा करते थे है। जब है तो फिर है तो फिर है, फिर है तो क्या है, बोले ये तब जब है को मानोगे उसके बाद तुम्हें ये जो जगत दिखाई देगा ना, ये सब सब उसकी लीला दिखाई पड़ेगी। उनके शब्द थे, ये संपूर्ण जगत ईश्वर की लीला दिखाई पड़ेगी और ये लीला देखने भर के लिए है। देखो लीला, देखो तुम इस लीला के दृष्टा हो, देखो 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 जो ये लीला दिखा रहा है उसको देखो। प्रेम देखने में कोई बुराई नहीं है, देखो, परंतु जब ये ईश्वर की लीला है ये सब तुम देखोगे तो ये लीला का दर्शन होगा और कैसी कैसी वो लीला कर रहा है ये सब तुम्हें देखना है। परंतु लीला देखते देखते कहीं लीला में, इस लीला में हम खो न जाए, गुम न हो जाए, उसके लिए स्मरण रखो, याद रखो। बोले स्मरण रखो, अपनी अपने आप को याद रखो, भूलो नहीं। इसलिए भगवान से हर समय कहो, हे ईश्वर मैं तुझे कभी भूलू नहीं। बीच बीच में मैं इस लीला को, इस संसार को देखते हुए कहीं आपको भूल न जाऊं, उससे याद को, हे नाथ मैं आपको कभी भूलू नहीं, हे ईश्वर मैं आपको कभी भूलू नहीं। बस इतनी कृपा रहे, बस इतनी कृपा रहे। नारायण संत का समझाने का ढंग है, यहां ईशावास्य उपनिषद समझाती है। ईशावास्य उपनिषद हमें कहती है कृतो स्मरण, स्मरण रखना, देखो भूल नहीं जाना, याद रखना, याद रखना। क्या याद रखना, बोले ओम इत्यक्षरम, केवल एक अक्षर को याद रखना, ओम। ओम जब करते हो तो आवाज क्या जाती, अंदर की ओर। ओम के साथ श्वास भीतर आती है, जब अंदर आ गए तो ब्रह्म है और बाहर निकल गए तो माया है। केवल फर्क इतना है, जो बाहर है, जो दिखता है उसी को माया कहते हैं और जो दिखता नहीं है उसी को ब्रह्म कहते हैं। बस केवल इतना अंतर है। ये जो जो कुछ दिखाई पड़ रहा है इसी को हम माया कहते हैं। माया दिखती है, दिखना अलग बात होता है और होना अलग। पर ये माया किससे भासित होती, दिखती है बोले ये जो दिखाई पड़ने वाली माया है, दिखती तो उसी की सत्ता से, परंतु जब आप ओम का स्मरण करके अपने भीतर आ जाते हैं तो अंतः भीतर आने पर निर्भयता हो गई। दरवाजा बंद कर लिया, बाहर शोर हो रहा, ढोल बज रहे, कुछ भी हो रहा, आपको कोई चिंता, मान लो आप अपने घर के तीसरी मंजिली पर बैठे हुए हैं और सड़क में झगड़ा हो रहा है, दो आदमी लड़ रहे हैं, तो तुम्हारा कुछ बिगड़ने वाला है? क्योंकि तुम तो सुरक्षित हो। हाँ, तुम ऊपर से झगड़ते हुए देख भी लो तो तुम्हारी कोई हानि होने वाली नहीं है। इसी तरह से जिसने अपने आप को अंतर्मुख कर लिया है, जिसने अपने आप को बहिरता से भीतर कर लिया है, उसे फिर बाहर की होने वाली क्रिया से कोई हानि होने वाली नहीं है। बाहर प्रकृति अपने स्वभाव के अनुसार गतिशील होकर कार्य कर रही है, उसमें कोई हानि नहीं है। पर भीतर आने का तरीका क्या है? बोले अंतः होने का तरीका यही है कि ओम ये स्मरण करो और इस स्मरण के साथ भीतर हो जाओ। इन्हीं शब्दों के साथ आज की बात को यहीं विराम दूंगी। शेष चर्चा कल करेंगे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान।